ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಶಬ್ದೋ ಸೇ ಜೋ ದಿಲ್ ಕೋ ಛೂ ಜಾತೇ ಹೈ, ವಿಚಾರೋ ಸೇ ಜೋ ಜೀವನ್ ಕೋ ದಿಶಾ ದೇತೇ ಹೈ, ಐಸಿ ಶಖ್ಸಿಯತ್ ಉಷಾ ದೀದಿ ಜೀ ಹಮ ಸಬ್ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ಉಪಸ್ಥಿತ ಹೈ. ಲಗಭಗ್ ಆಪ್ ಮೇ ಸೇ ಸಭಿ ಉಷಾ ದೀದಿ ಕೋ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಿ ತರಹ ಸೇ ಜಾನ್ತೇ ಹೋಂಗೆ. आप बहुत ही वर्षों से अर्थात 1980 से आपने अपने जीवन इस ईश्वरीय सेवा अर्थ समर्पित की है. 1980 से 1992 तक आपने मुंबई एवं हैदराबाद में अपनी सेवाएं दी. तत्पश्चात आप यहीं माउंट आबू ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर में रहकर अपनी सेवाएं दे रही है. दीदी बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, एक बहुत कुशल वक्ता है और राइटर भी है. इन्होंने सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप पर हिंदी और अंग्रेजी में किताबें लिखी है. कई विषयों पर बहुत अच्छी तरह से आपने मार्गदर्शन किया है. देश विदेश के अनेक आत्माओं को परमात्मा के साथ जुड़वाने का कार्य किया है. आपके प्रवचन कई चैनलों पर आज भी प्रसारित होते रहते हैं. विशेष भारत का धर्मशास्त्र गीता, जिसके ऊपर आप बहुत सुंदर सहज सरल भाषा शैली में आप लोगों को समझाते हैं, और सिर्फ समझाते नहीं पर उसमें जो भगवान ने कहा है वो आपके जीवन के द्वारा दिखाई देता है. तो ऐसी दीदी जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं. दीदी जी के मुखारविंद से अब हम आज के सेशन के अनुभव युक्त वाणी सुनेंगे. ओम शांति.
ओम शांति. गुड मॉर्निंग. आज के राजयोग के ये प्रथम सत्र में राजयोग का मुख्य आधार स्वयं का परिचय, क्योंकि आत्मा क्या है ये तो हम सभी जानते हैं, और विशेष हिंदू धर्म में भारतवासी होने के नाते से बचपन से ही ये मान्यता हमें दी गई है कि शरीर एक वस्त्र मात्र है और इस शरीर में चैतन्य शक्ति आत्मा है. जो आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति है, चैतन्य शक्ति है. राजयोग में जो सर्वप्रथम आत्मा की वास्तविकता को जानना क्योंकि जब तक आत्मा को समझा ही नहीं है तब तक न ध्यान हो सकता है न योग हो सकता है। भारत का ये प्राचीन काल का राजयोग जो गीता में भगवान ने वर्णन किया है और अर्जुन से यही कहा कि हे अर्जुन, इस राजयोग के माध्यम से ही मैं तुझे राजाओं का राजा बनाता हूं। राजाओं का राजा अर्थात पहले स्वयं की इंद्रियों का राजा, और जिसने अपने इंद्रियों पर राज्य किया हो वो मन पर भी सहज अधिकार प्राप्त कर लेता है। तब कहा राजाओं का राजा, और कहा जाता है कि मन जीते जगत जीत, जिसने मन को जीता है उसने जगत को जीता बराबर है। परंतु जो आत्मा की वास्तविकता है जब तक उसको समझा ही नहीं तब तक अपने इंद्रियों के ऊपर अधिकार कैसे प्राप्त कर सकेंगे। आत्मा को उस मालिक अवस्था में ले आना यही राजयोग का पहला कदम है। तो आज के इस प्रथम सत्र के अंदर बारिश के फुहारे होते हुए भी आप सभी यहां पहुंच गए, तो आप सबका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन इस प्रथम सत्र में करते हैं। और ये जो आज का विषय है उसको हम स्पष्ट करेंगे। योग का सरल अर्थ अगर लिया जाए तो योग माना ही जोड़, संबंध या मिलन। मनुष्य का संबंध अनेकों के साथ रहता है। जब हमारा संबंध भौतिक चीज वस्तुओं के साथ है तो उसको कहते हैं भौतिक योग है। जब हमारा संबंध समय के साथ होता है और कोई कार्य अचानक समय पर हो जाए तो यही कहते समय का संयोग था जो ये कार्य हो गया। हमारा संबंध मनुष्य के साथ भी है, और किसी व्यक्ति से अगर समय पर मदद मिल जाती है तो यही कहते इस व्यक्ति का सहयोग था। योग निरंतर चलता है। किसी के जीवन में अगर इष्ट देव की कृपा हो गई तो यही कहते इसके जीवन में एक दैवी योग है। लेकिन राजयोग ये सर्वश्रेष्ठ योग आत्मा का पिता परमात्मा के साथ, और उसके लिए आत्मा को भी समझना जरूरी है और पिता परमात्मा को भी समझना आवश्यक है। आत्मा की यथार्थता क्या है? तो जीवन माना जहां शरीर और आत्मा का योग हुआ, जोड़ होता है। जीवन में शरीर की वास्तविकता को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि शरीर माना पांच तत्व। इसीलिए ये शरीर जीवन जीने के लिए पांच तत्वों की मांग करता है। आज ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि ये शरीर बना है ऑक्सीजन से। पानी चाहिए क्योंकि 60-70% शरीर के अंदर पानी का हिस्सा है। व्यक्ति जब पानी पीता है तो सोच के नहीं पीता है कितना पीना है, लेकिन जैसे ही अंदर का वाटर लेवल बैलेंस हो जाता है कि अपने आप ग्लास छोड़ देते हैं। ये नहीं कि एक्सेस पी ले कल के लिए चलेगा, शरीर रखता भी नहीं है। तो ये पांचों तत्व शरीर को जीने के लिए आवश्यक है, क्योंकि शरीर उसी पांच तत्व से बना है। एक तत्व भी अगर कम हो जाए तो बेचैनी होती है। ठीक इसी तरह इस शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, आत्मा को भी जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए शरीर में या कुछ नहीं चाहिए? क्या कहेंगे? शरीर को पांच तत्व चाहिए, आत्मा को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? कुछ चाहिए? या सोचते आत्मा निर्लेप है, उसको कुछ नहीं चाहिए? क्या कहेंगे? हाँ, आत्मा को चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। और आत्मा को भी जीवन जीने के लिए सात बातें चाहिए, शरीर को पांच चाहिए। आत्मा को सात चीज कौन सी चाहिए? हर इंसान को संसार के अंदर जीवन में शांति चाहिए। कोई है जो कहेगा मुझे टेंशन चलेगा? हर इंसान को जीवन जीने के लिए सुख चाहिए। किसी को दुख चाहिए? नहीं। हर इंसान को जीवन जीने के लिए प्रेम चाहिए कि नफरत चलेगी? हर इंसान को जीवन जीने के लिए खुशी चाहिए, आनंद चाहिए कि उदासी चलेगी? कोई भी धर्म का हो, जाति का हो, देश का हो, भाषा का हो, ये सात गुण हर इंसान को चाहिए। जिस तरह पांच तत्व हर इंसान को चाहिए, संसार के अंदर सारे प्राणी मात्र को चाहिए, कोई भी जाति का हो, धर्म का हो। और इसीलिए कुदरत ने पांचों तत्व एक समान बनाकर रख दिया। ये नहीं कि भारत वालों को अलग क्वालिटी की हवा पानी मिलेगा, नेपाल वालों को अलग मिलेगा, नहीं, एक समान। ठीक इसी तरह जीवन के अंदर ये सात गुण हर इंसान को चाहिए, कोई भी जाति, धर्म, भाषा, देश का हो। उसमें सर्वप्रथम कौन सा गुण चाहिए? ज्ञान चाहिए। बच्चा जब पैदा होता है और वो रो रहा हो, उसके सामने कोई आवाज करने वाला खिलौना रख दो, वो शांत होकर के देखेगा ये आवाज कहां से आ रही है। जिज्ञासा। थोड़ा बड़ा होता है, वही आवाज करने वाला खिलौना उसको तोड़ करके देखना चाहता है ये आवाज कहां से आ रही है। जिज्ञासा उस उम्र से है। ज्ञान चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसी से ही हमारे जीवन में, व्यवहार में, संबंधों में अंडरस्टैंडिंग आ सकती है। आज मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं न कहीं ज्ञान का अभाव है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, वी हैव लॉस्ट विजडम इन नॉलेज एंड वी हैव लॉस्ट नॉलेज इन इंफॉर्मेशन। आज की दुनिया में ज्ञान कहाँ है? सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, और जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन किसी के पास है उतना वो अपने आप को बड़ा समझता है। सूचनाएं ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो लुप्त हो गया है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, स्कूल में जाते ही अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो हे प्रभु, प्रार्थना में यही सिखाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है ज्ञान आता है या अज्ञान आता है, क्या कहें, ज्ञान की प्राप्ति होती है या अज्ञान की प्राप्ति होती है? अज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, अज्ञान की ओर ही आगे बढ़ता है। कैसे? मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा अज्ञान अगर है तो वह है अहंकार। ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस इन लाइफ। तो मनुष्य जैसे जैसे आगे बढ़ता है अहंकार उसका बढ़ता जाता है, तो ज्ञान कहाँ आए? अज्ञान ही बढ़ा। और इसलिए आज संसार के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर है तो ईगो प्रॉब्लम ही है, जिस कारण परिवार टूटता है, संबंध टूटता है, मनुष्य जीवन बिखर रहा है। लेकिन किसी ने हमें बताया नहीं कि उस ज्ञान को कैसे जीवन में प्राप्त करें। यथार्थ ज्ञान जब आता है तो जीवन के अंदर विनय, विनम्रता सहजता से आने लगती। ये पहचान है उसकी। अगर अहंकार बढ़ता है माना वो ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। तो हर इंसान को क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, जिससे वो अपने आप को भी समझ सके, दूसरों को भी समझ सके। ये ज्ञान की प्राप्ति चाहता है। ज्ञान के साथ साथ दूसरा गुण वो है शुद्धि, पवित्रता। जिस तरह बाह्य पवित्रता को हम अपनाते हैं ऐसे आंतरिक शुद्धि भी आवश्यक है। आज जहां कहीं पवित्र वातावरण होगा अच्छा लगता है, जहां अपवित्रता होगी वहां मन करेगा बाहर चलो, निकल जाओ यहां से, वहां ठहरने का मन नहीं करता है, अशुद्धि है। आज मनुष्य मंदिर में क्यों जाता है? थोड़ी घड़ियों के लिए भी मंदिर में जब जाता है सुकून का अनुभव करता है, क्योंकि शुद्धि है। तो आत्मा को क्या अच्छा लगा? जो उसकी वास्तविकता है वही अच्छा लगा। एक बच्चा जब पैदा होता है तो कितना निर्मल पवित्र है, ये उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ता है धीरे धीरे जीवन में अनेक इम्प्यूरिटीज आने लगती है। जब वो बच्चा था पवित्र निर्मल था तो सारे घर के वातावरण को भी चार्ज कर देता। हम सबकी भी ओरिजिनल आइडेंटिटी वही है, हम भी ओरिजिनल प्योर है एकदम, ये हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है। लेकिन उस ओरिजिनलिटी से बहुत दूर चले गए। जहां ज्ञान है, अंडरस्टैंडिंग है, शुद्धि है, उसी संबंध में प्रेम पनप सकता है, तीसरा गुण। आज हर इंसान को प्रेम चाहिए, बच्चे को भी प्यार चाहिए, तो बड़े बुजुर्ग के साथ भी जब कोई प्यार से व्यवहार करता है तो अच्छा लगता है। ये नहीं कि बड़े बुजुर्ग ने सारा जीवन बहुत प्यार पाया, अभी बुढ़ापे में प्यार नहीं मिला तो चलेगा? चलेगा नहीं। हर इंसान को प्यार चाहिए, और वो भी अनकंडीशनल लव, कंडीशन के आधार पर नहीं, स्वार्थ के आधार पर नहीं, निस्वार्थ प्यार चाहिए। क्यों चाहिए? यही हमारी वास्तविकता है। इसलिए लेकिन आज प्यार के बदले स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, तभी तो व्यक्ति कभी कभी जब जीवन में तंग हो जाता है तो क्या कहता है, अरे जहां देखो स्वार्थ ही स्वार्थ है। क्या स्वार्थ के बिना कोई दुनिया नहीं होती है? जहां ये तीनों है वहां शांति है। चौथा, जहां अहंकार हो, अशुद्धि हो, स्वार्थ हो, वहां कभी शांति नहीं होती है। इसलिए आज मनुष्य परेशान है, समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे कि कुछ चाहिए जीवन के अंदर जो नहीं है वो प्राप्त करना चाहते हैं। कहने में भी कहता है शांति चाहिए, कौन सी शांति चाहिए? जंगलों में चले जाओ शांति है, लेकिन वो शांति नहीं चाहिए हमें, तो कर्म करते हुए हमारा मन शांत रहे वो शांति चाहिए, वातावरण की शांति नहीं चाहिए, निष्क्रियता की शांति नहीं चाहिए, लेकिन हर कर्म करते हुए मन की स्थिति शांति की। क्यों? क्योंकि जहां मन शांत होगा उसकी रचनात्मकता बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, इसलिए शांति चाहिए। जहां ये चारों है, अंडरस्टैंडिंग है, शुद्धि है, प्रेम है, शांति है, वहां जीवन में सच्चा सुख है। आज सुख कहां? जहां देखो स्वार्थ, टेंशन, दुख ही दुख है, और इंसान चाहता यही सुख है, सुकून चाहता है, सुख माना सुकून चाहता है अंदर का। और जहां ये पांचों बातें वहां जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति आनंद है। हर इंसान आनंद चाहता है। क्यों? क्योंकि यही हमारी वास्तविकता है, आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है, अर्थात आत्मा का सत्य स्वरूप, उसकी चैतन्यता की अभिव्यक्ति आनंद से है। जहां आनंद नहीं तो इंसान क्या कहता है, जैसे चैतन्यता ही समाप्त हो गई, और इसीलिए कहता है कि जैसे जिंदा लाश है, जी रहे हैं बस ऐसे ही जी रहे हैं, आनंद नहीं। तो आत्मा की चैतन्यता की अभिव्यक्ति आनंद से है, इसीलिए हर इंसान को आनंद चाहिए। आनंद तो छोड़ो, आज खुशी भी नहीं है। फर्स्ट स्टेप जो खुशी होनी चाहिए वो भी नहीं रही। खुशी का अनुभव करने के लिए लोगों को लाफिंग क्लब्स ज्वाइन करना पड़ता है, बगीचे में जाके हंसते हैं, घर में हंस नहीं पाते हैं। अगर घर में मुस्कुरा दिया तो सबसे पहले तो घर वाले ही पूछते हैं, क्या बात है, बड़े मुस्कुरा रहे हो। और अगर व्यक्ति अपने मन की बात बताना नहीं चाहता कि किस लिए मुस्कुरा रहा है और कह दिया बस ऐसे ही क्यों मुस्कुरा नहीं सकते क्या, तो क्या कहते हैं घर वाले हैं, आर यू ओके, ठीक हो, हाउ कैन यू स्माइल विदाउट अ रीजन, बिना वजह आप कैसे मुस्कुरा सकते हो, या तो ठीक नहीं है। इसलिए भी व्यक्ति आज संसार में टाइट होके चलता है, मुस्कुराना भूल गया है। और कहीं कोई ये ना लेबल दे दे ये बिना वजह ही मुस्कुराता है, कोई प्रॉब्लम है जरूर उसमें, सीरियस हो गया है, खुशी का अनुभव करना चाहता है लेकिन खुशी नहीं है। और जहां ये छह बातें हैं वहां आत्मशक्ति है, विल पावर। आज विल पावर तो छोड़ो, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, आत्मविश्वास खत्म हो रहा है। और हर इंसान को शक्ति चाहिए, इसीलिए भगवान से हमने ये सात बातें ही मांगी प्रार्थना में। सबसे पहले कहा अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो हे प्रभु, दूसरा कहा मैली चादर ओढ़ के आया रे, हे प्रभु तू साफ कर देना, शुद्ध कर देना। भगवान भी पूछता है कब तक, कब तक मैले होते रहेंगे, कब तक मैं साफ करता रहूंगा। अब भगवान ने भी साफ करना छोड़ दिया तो कितना मैलापन बढ़ रहा है। मनुष्य जब एक दूसरे के समीप आते हैं फिर एकदम मन दूर होने लगता है, पूछो क्या बात है, तो कहा कि अरे हमने तो समझा ये व्यक्ति की नियत बहुत शुद्ध है, साफ है, बाद में पता चला बड़ा मैलापन है अंदर में, तो इसलिए अनकंफर्टेबल फील किया तो दूर हो गए। तो शुद्धि चाहिए। तीसरा भगवान से कहा तू प्रेम का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हो। भगवान से कहा बस एक बूंद भी मिल जाएंगी ना तो जीवन जीने के लिए काफी है। चौथा कहा हमको मन की शांति देना, हे प्रभु तू दुख हरता सुख करता है, दुख हर के सुख दो। फिर कहा तू सच्चिदानंद स्वरूप है, हमें आनंद दो। और लास्ट में कहा इतनी शक्ति देना दाता जो विश्वास कभी कम न हो। अब ये सातों गुण हमेशा हम भगवान से प्रार्थना में मांगते रहे, कभी कौन सा गुण मांगा, कभी कौन सा गुण मांगा, मिल गया नहीं मिला। कोई चीज थोड़ी है जो ऊपर वाला फेंकेगा और हम रिसीव कर लेंगे, इसलिए नहीं मिला। दूसरे शब्द में कहे तो ये सात गुण ये आत्मा की बैटरी है, लेकिन आज के युग में ये बैटरी एकदम डिस्चार्ज है, न शांति है, न सुख है, न आनंद है, न खुशी है, न शक्ति है। अब ये बैटरी को चार्ज करना है। कैसे चार्ज करेंगे? अनजानेपन में हमने कोशिश किया चार्ज करने की, कैसे किया? कैसे किया? सबसे पहला चार्ज करने का प्रयत्न किया, दूसरों से अपेक्षा, भाई उसकी बैटरी से हमारी बैटरी थोड़ी चार्ज हो जाए। अपेक्षा रखी, ये व्यक्ति मुझे प्यार दे, ये व्यक्ति मुझे खुशी दे, ये व्यक्ति मुझे सुख दे, ये व्यक्ति मुझे शांति दे। मिला? नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जैसे मेरी बैटरी डिस्चार्ज है, वैसे उसकी बैटरी भी तो डिस्चार्ज है। अब डिस्चार्ज बैटरी को कैसे चार्ज करेगी, बताओ, चार्ज करेगी? इसलिए अपेक्षा रखने पर प्राप्त नहीं हुआ और ही कॉन्फ्लिक्ट बढ़ी। क्या कहा? दुनिया में रिश्तों में क्या कहते हैं, अरे थोड़ा सा सुख चाह, वो भी हमारा अधिकार नहीं है क्या? लेकिन सुख हो तब तो दे, थोड़ा सा प्यार ही तो चाह, इतना भी नहीं दे सकते, लेकिन हो तब तो दे ना। वो खुद प्यार कहीं और ढूंढ रहा है, कैसे दे सकता है? इसलिए संबंधों में तनाव बढ़ता गया, क्योंकि अपेक्षा रखी और अपेक्षा रखने पर प्राप्त नहीं हुआ। तो ये पहला तरीका तो फेल हो गया। तब दूसरा तरीका अपनाया, भगवान से मांगो, वही स्रोत है, वहां से मिलेगा। इसलिए अपनी प्रार्थना में यही सात चीजें मांगते रहे, वहां से भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कोई चीज नहीं है जो फेंक दिया और हमने रिसीव कर लिया। तब तीसरा तरीका अपनाया, कौन सा? कर्म करो, कर्म करने से मिल जाएगा। इसलिए आज मनुष्य कर्म कर रहा है, इंसान धन कमाता है। किस लिए? धन चाहिए, किस लिए चाहिए? सोचता है धन होगा तो सुख शांति से जी सकेंगे, इसलिए धन चाहते हैं। करोड़पति को पूछ लो, सुख शांति आ गई तो क्या कहेंगे? भगवान की दया से सब कुछ है, लेकिन यही नहीं है। कई लोग समाज सेवा करते, पूछो समाज सेवा क्यों करते? कहते खुशी मिलती है, इसीलिए आनंद मिलता है। पूछो आनंद मिला तो क्या कहते हैं? अरे बहुत पॉलिटिक्स है आनंद का। कई लोग शादियों में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं। पूछो शादियों में क्यों जाते हो, पार्टीज में क्यों जाते हो? कहते जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? तो कहते समाज में रहते हैं तो हमारा एक दूसरे से प्यार बना रहे, इसलिए जाना पड़ता है। पूछो प्यार बना तो क्या कहते? अरे एक को खुश किया, दो नाराज हो गए। उन्होंने हमको वहां देख लिया तो नाराज हो गए। बना कहां, बिगड़ता ही जा रहा है। तो मनुष्य ने विभिन्न कर्म किए। गंगा स्नान करने गए, कुंभ मेले पर, किस लिए? आत्मशुद्धि के लिए। पूछो आत्मशुद्धि हो गई? अरे इतना सरल तरीका अगर हो आत्मशुद्धि का, फिर तो सारे क्रिमिनलों को ले जाकर के डुबकी लगवा देनी चाहिए। जेल बनाने की जरूरत है क्या? छोड़ दो, आत्मशुद्ध हो गई। ऐसे आत्मशुद्धि नहीं होती है जब तक रियलाइजेशन न हो। बाहर की शुद्धि हो सकती है, मन जो मैला है वो कोई गंगा में डुबकी लगाने से थोड़ी शुद्ध हो जाता है। तो मनुष्य ने विभिन्न कर्म किए कि कैसे भी करके ये बैटरी चार्ज हो जाए, लेकिन चार्ज क्या? डिस्चार्ज ही होती गई। इसलिए आज लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स है, हर कदम में चुनौती है, चैलेंजेस है। हर कदम में कहीं ना कहीं समस्याएं हैं, क्योंकि बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। गाड़ी की बैटरी चार्ज रखनी है तो क्या करना पड़ेगा? चलाते रहो, जितना ये चलता रहेगा, गाड़ी चलती रहेगी, बैटरी चार्ज होती रहेगी। अगर लाकर खड़ा कर दिया गैराज में, साल दो साल चलाओ ही नहीं, दो साल के बाद चलाने जाओ, क्या होगा? बैटरी डिस्चार्ज। तो आत्मा की बैटरी को चार्ज करने का पहला तरीका आज आपको बताती हूं। पहला तरीका है, उसको चलाते रहो जीवन में। लेट द एनर्जी फ्लो। एनर्जी को रोका नहीं जा सकता है। ये सातों गुणों की जो ऊर्जा है वो बांटते चलो। इसलिए कहा जाता, बांटने से बढ़ता है ज्ञान। बांटते चलो, बांटने से बढ़ता है प्रेम। बांटते चलो, बांटने से बढ़ता है। तो बैटरी चार्ज करने का पहला तरीका है, लेट द एनर्जी फ्लो। शांति की ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा, ज्ञान की ऊर्जा, शक्ति की ऊर्जा, इसको बहने दो, फ्लो होने दो, बांटते चलो, देना चालू करो। आप किसी को सम्मान देंगे, सम्मान मिलेगा। आप किसी को सहयोग देंगे, सहयोग मिलेगा। आप किसी को खुशी देंगे, खुशी मिलेगी। आप किसी को गाली दो, गाली मिलेगी। जो देंगे वो वापस आएगा, जो देंगे वो वापस आएगा। ये संसार का नियम है। इसलिए कहा जाता है, व्हाट यू गिव यू गेट। आप दुआएं देंगे, आपको दुआएं मिलेंगी। आप शुभकामनाएं देंगे, आपको भी शुभकामनाएं मिलेंगी। आप किसी को नफरत करेंगे, आपको नफरत ही मिलेगी। जो देंगे वो वापस आएगा। इसीलिए अगर ये सातों गुणों से बैटरी चार्ज करनी है, देना शुरू करो। देखो, इस संसार में हर चीज दे रही है, दे रही है। सूर्य दे रहा है, वायु दे रहा है, इंद्र दे रहा है, प्रकृति के पांचों तत्व दे रहे हैं, इसलिए उनको देवता कहा। उसके अलावा संसार के अंदर जो चीज है वो भी दे रही है। वृक्ष फल दे रहा है, छांव दे रहा है, नदी शुद्ध पानी दे रही है। किसी कवि ने बहुत सुंदर ये गीत की लाइन लिखी है, नदी न पिए अपना जल, पेड़ न खाए अपना फल, है ही देने के लिए। वहां तक कि मनुष्य की बनाई हुई चीजें भी दे रही है। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, ये कुर्सी आराम दे रही है। अगर सारी कुर्सियों को हटा दिया जाए नीचे बैठने के लिए कहे तो नहीं बैठा जाता, घुटनों की प्रॉब्लम है हर एक को। कितनी देर बैठेंगे? 5-10 मिनट अगर बैठ भी गए, उसके बाद सोचेंगे ये कब पूरा होगा, बाहर निकले, दोबारा आएंगे नहीं, नीचे बैठा नहीं जाता है। तो ये कुर्सी आराम दे रही है, ये माइक दे रहा है, ये लाइट दे रहा है, पंखा दे रहा है। मनुष्य की बनाई हुई चीज, हर चीज तो दे रही है। कौन सी चीज है जो नहीं दे रही है? एक मनुष्य है जो ले रहा है और इस प्रोसेस में वो देना भूल गया। तो देने वाले को कहेंगे देवता, लेने वाले को कहेंगे लेवता। तो आज मनुष्य देवता होना चाहिए, लेवता होना चाहिए? देवता होना चाहिए लेकिन लेवता बन गया है, और लेवता हो गया तो देना ही भूल गया। अब भगवान आके कहते हैं कि बैटरी को चार्ज करना है तो देना शुरू करो। एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है कि एक बार एक राजा था। राजा को ट्रैवल करने का बहुत शौक था, देश विदेश जाता था घूमने के लिए। अब जहां जाता था वहां से उसको अमूल्य भेंट मिलती थी। तो जब वापस लाया है, अभी इतनी गिफ्ट्स हो गई कि महल में रखने की भी जगह नहीं, तो उसने दरबार बुलाकर पूछा सबसे, भाई अभी इतनी गिफ्ट्स हो गई है, क्या किया जाए इन सब गिफ्ट्स का, कहां रखे? तो किसी ने कहा म्यूजियम बना देते हैं। कहा नहीं, म्यूजियम नहीं बनाना है। फिर राजा को ये विचार आया कि अपनी प्रजा में बांट देते हैं, हर कोई इतना संभाल के रखेंगे, और इतना ही नहीं लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी दिखाएंगे, ये देखो हमारे राजा ने दिया था, ये अमूल्य भेंट दिया था। तो जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन लोग याद करेंगे कि भाई इतना अच्छा राजा था। तो राजा ने जैसे ये बात कही तो सबको पसंद भी आई कि हाँ बांट देना चाहिए। तो जैसे ही एक दिन ऐलान किया भाई संडे का दिन, राजा अपनी अमूल्य भेंट बांटना चाहते हैं, जिसको भी चाहिए आ जाए। तो देखा गया कि संडे के दिन सुबह सुबह इतनी लंबी लाइन लग गई, सारे लोग खड़े हो गए गिफ्ट लेने के लिए। अब राजा ने जैसे ही देना शुरू किया अमूल्य भेंटों को, लेने के बाद लेने वाला क्या कहेगा, क्या कहेगा, क्या कहेगा? शुक्रिया बस, और क्या कहेगा? लेने वाला कोई ना कोई दुआ देता था, भगवान आपको लंबी आयु दे, कोई कहता भगवान आपको सदा स्वस्थ रखे, आप कई साल जियो, यही हमारी भावना है। तो हर कोई जब गिफ्ट लेता था तो अंदर से जैसे दुआएं देता था राजा को। अब जब दुआएं मिलती है तो व्यक्ति को खुशी होती है, आनंद होता है, तो राजा के चेहरे पर भी वो आनंद का भाव प्रकट हो रहा था, सुकून मिल रहा था वो दुआएं सुन करके। अब उस लाइन में एक फकीर था। फकीर जब ये देख रहा था कि राजा के चेहरे पर कितना सुकून प्रसन्नता है, तो फकीर ने सोचा यही चीज तो मैंने अनुभव करने के लिए फकीरी धारण की है, लेकिन मैंने अभी तक अनुभव नहीं किया। आज इसका सीक्रेट समझ में आया कि देना पड़ता है तब जाकर के ये सुकून अनुभव होता है। अब फकीर ने सोचा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने का, मैं क्या दूं जो मैं इस चीज का अनुभव कर सकूं। इतने में उसका टर्न आ गया तो उसने पीछे वाले को कहा आप आगे जाएंगे, कौन नहीं जाना चाहता है। वो आगे गया तो आगे जाते हुए वो उसको कहता गया भगवान आपको सदा खुश रखे। उसको लगा ये तो बड़ा अच्छा है, खाली आगे कर रहा हूं उसमें मुझे मिल रहा है दुआएं। तो उसने दूसरे को कहा आप आगे जाना चाहेंगे? कहा क्यों नहीं, भगवान आपको लंबी आयु दे, भगवान आपको सदा तंदुरुस्त रखे। हर कोई आगे जाता था उसको कुछ न कुछ दुआएं देके जाता था। बड़ा अच्छा लग रहा था वो दुआएं सुन करके। धीरे धीरे वो वहां से सबको आगे करते हुए चला गया। अब राजा ने जैसे ही सबको ये अमूल्य भेंट बांट दी, उसके बाद राजा ने अपने गुप्तचरों से कहा कि आप नगर में घूम के तो आओ, लोग खुश है गिफ्ट लेकर के, क्या कह रहे हैं सुन के आओ। गुप्तचर गए, चारों तरफ फैल गए, हर कोई बात कर रहा था कि हमारा राजा कितना अच्छा है, कितनी अमूल्य भेंट हमको दिया। उसमें फिर किसी ने कहा, अरे उस लाइन में एक फकीर भी था, उसने कुछ लिया नहीं, लेकिन वो भी अपना टर्न दूसरों को दे करके वो निकल गया वहां से, उसने कुछ लिया ही नहीं, बड़ा अच्छा व्यक्ति था वो भी। तो राजा के साथ साथ उस फकीर की भी महिमा हो रही थी। गुप्तचरों ने आकर के राजा को सुनाया कि आपकी तो सब वाहवाह कर रहे थे, लेकिन आपके साथ साथ एक फकीर की भी वाहवाह हो रही थी। राजा ने पूछा उसने क्या दिया, क्या उसने कुछ दिया नहीं, अपना टर्न आगे करता गया लोगों को, और उसी से लोग प्रसन्न हो गए आगे जाने को जो मिला वो। तो राजा ने कहा उस फकीर को बुलाओ। कहा वो तो कहां निकल गया होगा क्या मालूम, किसी ने देखा ही नहीं उसको। तो राजा ने फिर ऐलान किया अब दूसरी गिफ्ट देंगे राजा, जिसको भी चाहिए वो फिर आ जाए। सोचा वो फकीर जरूर आएगा, और सचमुच फकीर आ गया। वो धीरे धीरे अपना टर्न बांटने लगा। राजा का ध्यान गया, राजा ने लाइन को रोक करके उस फकीर को बुलाया और कहा कि भाई ये तुम क्यों कर रहा है, लोगों को आगे क्यों कर रहा है, तुमको जो चाहिए ले लो और चला जाओ यहां से। फकीर मुस्कुरा कर कहता है, जो मुझे चाहिए वो तो मुझे मिल गया था उसी दिन, आज और प्राप्ति करने के लिए मैं आया हूं। कहा क्या चाहिए था, तो कहा जब आप गिफ्ट दे रहे थे ना, तो आपके चेहरे पर जो प्रसन्नता थी, आनंद था, मैं उसी को अनुभव करना चाहता था। मेरे पास तो चीज थी नहीं, इसीलिए मैंने टर्न बांटना चालू किया, आगे करना चालू, उसी में मुझे वो मिल गया। तो देने से मिलता है, देने वाले का हमेशा नाम संसार के अंदर गाया जाता है, लेने वालों का नाम का गायन नहीं है, देने वालों का नाम का गायन है। इसीलिए अगर बैटरी चार्ज करनी है तो देना शुरू करो, ज्ञान बांटो, आध्यात्मिक ज्ञान। सूचनाएं तो दुनिया में बहुत है और सूचनाएं तो बांटते रहते हैं, अरे फलानी जगह ऐसा हुआ, फलानी जगह ऐसा हुआ, फलाना के घर में ऐसा हुआ, सूचनाएं तो बहुत है, लेकिन वो ज्ञान नहीं है। आध्यात्मिक प्रज्ञा, आध्यात्मिक ज्ञान जितना आप बांटोगे उतना बढ़ेगा और खुशी होगी। ये है बैटरी चार्ज करने का तरीका। आप किसी को खुशी दो, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। आप किसी को सुकून दो, आपको सुकून मिलने लगेगा। आप किसी को हिम्मत दो, मोटिवेटिंग शब्द कहो, आपके आपको भी वो शक्ति अंदर में भरने लगेगी। हमें कोई अमूल्य भेंट बांटना नहीं है, उसके सिवाय भी बहुत कुछ है जो बांट सकते हैं। क्या है, आप किसी को शुभकामनाएं दे सकते हो, आप किसी को दुआएं दे सकते हो, आप किसी को सहयोग दे सकते हो, आप किसी को सम्मान दे सकते हो, आप किसी को हिम्मत दे सकते हो, मोटिवेटिंग शब्द कह सकते हो, बहुत कुछ है बांटने के लिए। बांट के तो देखो, बैटरी जरूर चार्ज होती है, और इतना अंदर में अच्छा लगेगा। तो इसीलिए कहा बैटरी चार्ज करने का पहला तरीका है बांटना शुरू करो। दूसरा तरीका है बैटरी चार्ज करने का, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। तो अपने चिंतन की धारा को देखो किस दिशा में जा रही है। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में होंगी तो चार्ज नहीं होंगी, बैटरी डिस्चार्ज होंगी, लीकेज है। जितना पॉजिटिव सोचते जाएंगे उतनी बैटरी चार्ज होगी। इसलिए आज दुनिया के अंदर ये जागृति जरूर है, पॉजिटिव सोचो, बी पॉजिटिव। लेकिन ये दूसरों को खाली सलाह देने तक, खुद के लिए हम पॉजिटिव सोच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव सोचने के लिए इतना मसाला चाहिए। आज इंसान को अगर कहा जाए 5 मिनट बैठो और कुछ अच्छा अच्छा सोचो, 2 मिनट सोचने के बाद इधर उधर देखेंगे दूसरे क्या कर रहे हैं। हमारे पास 2 मिनट से ज्यादा पॉजिटिव सोचने का मसाला नहीं है। और किसी को अगर कहा जाए जितना मर्जी है नेगेटिव सोचो, घंटों सोच सकता है, इतना मसाला है नेगेटिव सोचने का, व्यर्थ सोचने का, है ना, पॉजिटिव सोचने का नहीं है। तो पॉजिटिव थिंकिंग के लिए पॉजिटिव बातें चाहिए। और पॉजिटिव बातें कहां से मिलेगी, उसका सोर्स क्या है? आध्यात्मिकता एकमात्र स्रोत है जहां से हमें पॉजिटिव बातें मिलेगी, जिससे हम आत्मचिंतन से उसको आरंभ कर सकते हैं। तो पॉजिटिव सोचने से बैटरी चार्ज होगी, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। जितना नेगेटिव सोचोगे व्यर्थ सोचोगे तो लीकेज हो जाएगी। इसीलिए दिन के अंत में व्यक्ति एकदम थका हुआ महसूस करता है, सुबह फ्रेश उठता है, सोकर के जब उठा तो फ्रेश है, कुछ भक्ति किया, कुछ इधर अच्छी बातें सुन लिया, बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेश होकर के जैसे एनर्जेटिक होकर के काम पर जाता है, लेकिन दिन भर में सारी उसकी बैटरी लीकेज हो जाती है। और लीकेज होने के कारण घर जब आता है तो एकदम थका हुआ महसूस करता है। जितना पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा चिंतन होगा, उतनी बैटरी चार्ज रहेगी। ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका है कनेक्ट टू द सोर्स। जो सोर्स है उसके साथ अपने आप को जोड़ो। मांगना मांगने से नहीं मिलेगा, कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। जिस तरह कोई बैटरी एकदम डिस्चार्ज है तो उसको स्रोत के साथ जोड़ना पड़ेगा। पॉजिटिव नेगेटिव, ये दो वायर कनेक्ट करनी पड़ती है। तो हमारे अंदर भी ये दो वायर कौन सी है? मन और बुद्धि। मन और बुद्धि को जोड़ो, तब जाकर के वो एनर्जी का फ्लो आने लगे। जब बैटरी को कनेक्ट किया, जो एनर्जी फ्लो होने लगती वो दिखाई नहीं देती है। हाथ लगाओ तो पता चलेगा करंट आ रही है। ठीक इसी तरह जब ईश्वर के साथ अपने मन और बुद्धि को जोड़ते हैं तो जो करंट आती है वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन बैटरी चार्ज होने लगे। जिसको कहा ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन एक लैटिन शब्द से आता है, मेडिरी, एंड मेडिरी मीन्स टू हील दाई सेल्फ फ्रॉम विद इन। भीतर से अपने आप को चार्ज करना। तो जब ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ते हैं तब बैटरी चार्ज होती है। कई लोग हमें पूछते हैं क्या क्या प्रूफ है कि बैटरी चार्ज हो रही है, कैसे पता चलता है कि मन और बुद्धि को जोड़ा तो बैटरी चार्ज होने लगेगी। कहीं हम ऐसे सोच रहे हैं हाँ बैटरी चार्ज हो रही, होता कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं। देखो दुनिया के अंदर रिचार्जेबल बैटरीज आती है और ये रिचार्जेबल बैटरीज को जब आप यूज करते हैं तो डिस्चार्ज होती है, फिर उसको चार्जर में रखना पड़ता है तो रिचार्ज हो जाती है। मोबाइल को भी रोज चार्ज करना पड़ता है तभी दूसरे दिन काम करता है। तो बैटरी सारा दिन यूज किया, डिस्चार्ज हो गई, फिर उसको कनेक्ट किया चार्जर में के साथ, सोर्स के साथ कनेक्ट किया, चार्ज हो गई। अब ये डिस्चार्ज और रिचार्ज कैसे होती है? सिंपल साइंटिफिक लॉजिक यही कहता है कि बैटरी के अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स है जब उसको यूज करते हैं तो डिस्चार्ज डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं और ये डिसऑर्गेनाइजेशन माना डिस्चार्ज हो गए। जब उसको सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है तो वो करंट जो है उस करंट से वो केमिकल कंपोनेंट्स दे गेट रीऑर्गेनाइज्ड और जब संपूर्ण रीऑर्गेनाइज हो गया माना बैटरी चार्ज हो गई। तो हमारी बैटरी डिस्चार्ज है उसका प्रमाण हमारे भीतर के कंपोनेंट्स भी डिसऑर्गेनाइज्ड है। विचार अलग दिशा में है, वाणी अलग दिशा में है, कर्म अलग दिशा में है, दृष्टि अलग दिशा में, वृत्ति अलग दिशा में है, मन की स्थिति कुछ और है, भावनाएं कुछ और है। कोई भी कंपोनेंट ऑर्गेनाइज्ड है? यहां आप आए हैं कल से लेकर के और कुछ सीखा न सीखा हो एक शब्द जरूर सीख लिया होगा, ओम शांति। जिसको भी मिलते तो क्या कहते हो? ओम शांति। ओम शांति का मतलब क्या है? ये हेलो हाय गुड मॉर्निंग जैसा शब्द नहीं है। ओम शांति अर्थात ओम शब्द में तीन अक्षर है, अ उ म, ए यू एम, ओम। अ माना आचरण, ए फॉर एक्शन, उ माना उच्चारण, यू फॉर अटरेंस, म माना मन के विचार, एम फॉर माइंड। जीवन की ये तीन महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, सोचना, बोलना और कर्म करना। लेकिन आज ये तीनों अलग अलग दिशा में, सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, तो जीवन में शांति कहां से होगी? ओम शांति अर्थात देखो अपने आप को, मेरे मन के विचार मेरी वाणी से हार्मनी में काम कर रहे हैं और वाणी जो कह रहे हैं वो कर्म में है, तो मन वचन कर्म ये हार्मनी में है। अगर हार्मनी में है तो शांति है, अगर हार्मनी में नहीं है तो टेंशन है। इसीलिए जीवन के अंदर सारे कंपोनेंट्स, ये तीन तो है ही डिसऑर्गेनाइज्ड, लेकिन मन के विचार कुछ और, वृत्ति कुछ और, दृष्टि कुछ और, परसेप्शन देखने का नजरिया कुछ और, भावनाएं कुछ और, मनस्थिति कुछ और, कर्म कुछ और, वाणी कुछ और, कोई भी कंपोनेंट है ऑर्गेनाइज्ड। इसलिए लाइफ में फ्रस्ट्रेशन है, मेडिटेशन करके जब हम अपने मन और बुद्धि को जोड़ते हैं जो करंट आती है वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन उस करंट से हमारे ये भीतर के कंपोनेंट्स धीरे धीरे रीऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। जो सोचेंगे वही आपकी भावनाएं होंगी, फीलिंग्स होंगी, वही आपकी वृत्ति होगी, वही आपकी वाणी होगी, वही आपका कर्म होगा, व्यवहार होगा। धीरे धीरे सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होने लगता है, और जब संपूर्ण ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, माने बैटरी फुल चार्ज हो गई। ये प्रमाण है, ये प्रमाण है। आप 3 दिन के अंदर भी देखेंगे कितना सुव्यवस्थितता अंदर हो जाती है। मांगने की जरूरत नहीं। बाहर अगर खड़े हैं सूर्य के सामने, तो सूर्य से कभी मांगते नहीं कि सूर्य तेरी गर्माइश दे, खड़े रहो उसके कांटेक्ट में आओ, गर्माइश भर जाएंगे। पहाड़ों पर जाओ, पहाड़ों से कहना नहीं पड़ता है तेरी शीतल हवा मुझे दे, उसके कांटेक्ट में आओ शीतलता भर जाएंगी, रोम रोम में शीतलता आ जाएगी। ठीक इसी तरह ईश्वर से भी मांगने की जरूरत नहीं है, बस अपने मन बुद्धि को कनेक्ट करो, देखो आपके अंदर वो ऊर्जा आने लगती है और अपनी सिस्टम रीऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। 3 दिन में भी आप बहुत फर्क देखेंगे। यही है मेडिटेशन का कमाल। तो ये 3 तरीके हैं बैटरी चार्ज करने के। थोड़ी देर के लिए बैटरी चार्ज करें चिंतन से, ओके? तो इसीलिए कुछ क्षण के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लो। एक निवेदन रहेगा मेरा, जिसको भी उठना है पहले उठ जाए, बीच में कोई नहीं उठेगा। आपको अगर मेडिटेशन नहीं करना है, दूसरे को तो करने दो, आप वहां से गुजरते हैं सबको डिस्टर्ब करते हुए जाते हो, ये भी ठीक नहीं है। तो जिसको भी उठना है उठ जाइए। 5 मिनट हम सभी अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं। मन को अपनी वास्तविकता में ले जाते हैं। अंतर चक्षु से स्वयं को देखे, ब्रुकुटि के मध्य में मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा ज्योतिपुंज हूं, प्रकाशपुंज हूं। यह शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने धारण किया है संसार रंगमंच पर अपना पात्र निभाने। वास्तव में मैं आत्मा शरीर के कर्मेंद्रिय की मालिक हूं। महसूस करो मैं आत्मा सर्व कर्मेंद्रिय की मालिक हूं। धीरे धीरे स्वयं को देखो, अपने असली स्वरूप में। मैं आत्मा जब इस संसार में आई तो एकदम शुद्ध पवित्र थी, निर्मल थी। वह निर्मल स्वरूप, पवित्र स्वरूप कितना शुद्ध, कितना दिव्य था। ये मेरी वास्तविकता थी। मेरा स्वगुण शांति है। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। इसी शांति में सच्चा सुख समाया हुआ है। मैं आत्मा सुख स्वरूप। इसी शांति में परम आनंद। मैं आत्मा सत चित आनंद स्वरूप हूं। मेरा वास्तविक स्वरूप शक्ति स्वरूप। मैं शांत हूं, शुद्ध हो, शक्ति स्वरूप। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को वापस इस वर्तमान समय में ओम शांति शांति।
ओम शांति। दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप से और परमात्मा से जुड़ा लिया।